Today is between Master and Disciples will be presented in Hindi, with subtitle in Arabic, Olesic or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. हिंदुत्व को पृथ्वी पर के सबसे पुराने जीवंत धर्मों में से एक माना जाता है, जिसका मूल भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक आध्यात्मिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 900 ईस्वी पूर्व में संकलित हुआ। अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण शामिल है। अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के साथ हिंदुत्व एक विस्तृत, वैविध्य और रंगीन धर्म है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कारण और प्रभाव, कर्म का नियम, एक अकेला स्वर्गीय जीव जिसके बहुत से अवतार हैं और जिसकी सभी जीवों के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की इच्छा है, से एक मूल्य अहिंसा या हिंसा का निषेध है। हिंदुत्व के अनुसार धार्मिक मान्यताएं और अभ्यास दैनिक जीवन के अभिन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है कैसे अहिंसा को शाकाहार द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करता है। हम अब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ श्री देवी भागवतम के स्कंद 4 चौथे पुस्तक से।
देवी भागवतम चौथी पुस्तक अध्याय 4 अधर्म। राजा बोले, ए अति सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने आपसे वे किस्से सुने हैं जो मुझसे संबंधित हैं। मैं बहुत अधिक हैरान हूँ। यह संसार शरीरधारी का शिकंजा है। मैं चकित हूँ कि कैसे जीव इसके जाल में उलझकर भी मुक्त हो सकते हैं। जब कश्यप के पुत्र, जिनका साम्राज्य तीनों लोकों में है, ऐसा घृणित कार्य कर सकते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं कि कोई दूसरा साधारण व्यक्ति अधिक दोष योग्य कार्य करता है। सेवा की इच्छा से और पवित्र शपथ लेकर जब एक व्यक्ति अपनी सौतेली माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और पुत्र के जीवन का हरण करता है, तो इससे और क्या घृणित तथा भयानक घटित हो सकता है। जब धर्म के संरक्षक और नियंत्रक, तीनों लोकों के शासक ऐसा कार्य कर सकते हैं, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई दूसरा व्यक्ति घृणित और दुष्ट कार्यों को करने से बचा रहेगा। हे जगत गुरु, वास्तव में मेरे दादा ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अक्षम में भयानक तुच्छ कार्य किए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, युधिष्ठिर ने भी, जो स्वयं धर्म के अवतार थे, ये सभी धर्म के इस विपरीत कार्य में वासुदेव द्वारा उकसाए गए। देवांशों से उत्पन्न हुए ये सभी मान्य व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित और बुद्धिमान थे। ये इस जगत की नित्य प्रकृति को जानते थे। कैसे वे ऐसा तुच्छ दोष योग्य कार्य कर सके। हे ब्राह्मणों के गौरव, हमें धर्म के प्रति विश्वास और सम्मान क्या होगा, जब ऐसे उच्च आत्मा वाले व्यक्ति ऐसे आधार्मिक कार्य करते हैं। वास्तव में शक होता है कि धर्म का अस्तित्व है या नहीं। हे मुनियों में सर्वोत्तम, मेरा हृदय इन घटनाओं को सुनकर बहुत व्यथित हो गया है। अगर यह कहा गया है कि आप्तों के शब्द धर्म के अस्तित्व के लिए पर्याप्त हैं, फिर यह प्रश्न आता है कि कहाँ हैं ऐसे आप्त जिनका शरीर शुद्ध धर्म का बना है। वे सभी व्यक्ति जो सांसारिकता से जुड़े हुए हैं, अपने संपूर्ण मन और हृदय से इन सांसारिक चीजों के प्रति झुके हुए हैं, इसलिए ये आप्त नहीं हो सकते। जब स्वार्थ पर चोट पड़ती है, ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होता है, और स्वार्थ की सुरक्षा के लिए ईर्ष्या, असत्य शब्दों को जन्म देती है। शुद्ध, उत्कृष्ट, सद्गुणी श्री कृष्ण को भी पूर्ण चेतन अवस्था में जरासंघ के वध के लिए एक ब्राह्मण रूप में कपट करना पड़ा था, जैसे पवित्र हरि ने जरासंघ के वध के लिए झूठा रूप धारण किया, वैसे ही अर्जुन ने भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए झूठा त्याग किया। फिर कहाँ है वे जो एक आप्त होने का दावा कर सकता है, और ऐसे आप्त के विद्यमान होने का क्या प्रमाण है? यह किस प्रकार का त्याग था? क्या इस कारण अगले जगत में स्वर्ग मिला, या क्या गौरव प्राप्त हुआ, या किसी अच्छे कार्य का कारण बना? क्यों यह उस शांति और विश्राम से वंचित था? यह शिशुपाल और दूसरों के वध के विचार से किया गया था। प्राचीन काल के पंडित घोषणा करते हैं कि सत्य पहला पद है, दूसरा स्वच्छता, तीसरा करुणा और दान धर्म का चौथा पद है। इस प्रकार इनसे रहित कैसे धर्म सभी से सम्मान पा सकता है? कैसे कोई कार्य अच्छा फल धारण कर सकता है जिसमें गुण का लक्षण नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है किसी को भी उसके धर्म में विश्वास और स्थिरता का कोई लक्षण नहीं मिला। पांडवों ने अहंकार वश त्याग किया, कैसे वे आप्त हो सकते हैं? ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु ने अपना बौना रूप बाली दैत्यों के राजा से छल करने के स्पष्ट उद्देश्य से धारण किया। अब हे मुनि, राजा बाली ने 100 त्याग किए। वे सद्गुणी, दानशील, सत्यपूर्ण और आत्मनियंत्रित वेदों का रखवाला था। क्यों ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली विष्णु द्वारा उसके पद से हटा दिया गया? इस मामले में कौन विजय हुआ? क्या वह बाली था जो छला गया, या क्या वे वामन देवता छल करने में विशेषज्ञ? दोनों में बेहतर कौन था? मुझे इस पर गंभीर संदेह हुआ है। हे द्विजों में सर्वोत्तम, आप पुराण के रचयिता, सद्गुणी और मुक्त हृदय वाले हैं। जो सत्य है बोलें, और इस प्रकार मेरा हृदय शांत करें। व्यास बोले, हे राजन, विजय निश्चय ही बाली की हुई, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और धरती के अपने साम्राज्य को विष्णु को दे दिया, और क्योंकि विष्णु ने अपने पांचवें या बौने अवतार में बाली को धोखा दिया, उनको एक बौना बनना पड़ा। हे राजन, धर्म में सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। देखें, श्रीहरि को भी अपने झूठेपन के कारण बाली का द्वारपाल बनना पड़ा था। हे राजन, एक मानव के लिए प्रत्येक तरीके से सत्य का पालन करना असंभव है। वास्तव में शक्तिशाली तो माया है, जो तीन गुणों और बहुत से रूपों से रचित हुई है। उसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई, जो तीनों गुणों सत्व, राजस और तामस के मिश्रण द्वारा बहुविधित बना है। अतः आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एक कपटी द्वारा सत्य का संपूर्णता से अवलोकन होगा बिना हिंसा के? यह जगत राजस के मिश्रण से बना है। हे राजन, इसे प्रकृति में प्रतिदिन की नियमित चीजों के रूप में जाने। वे केवल मुनि और तपस्वी हैं जो शुद्ध सत्य का अवलोकन कर सकते हैं, और वे इसलिए क्योंकि वे बिना किसी इच्छा के होते हैं। वे किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करते हैं। वे बिना इच्छा के होते हैं, और वे सब जगत के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। वे पूर्ण उदाहरण के रूप में विद्यमान रहते हैं। उनका मामला थोड़ा अलग होता है। दूसरे सभी तीन मायावी गुण के जाल में जकड़े रहते हैं। हे राजाओं में सर्वोत्तम, धर्मशास्त्र, पुराण और अंग वेद अपने रचयिताओं के विभिन्न गुणों के प्रभाव में होने पर इस विषय पर विविध विचारों से भरे हुए हैं। सगुण व्यक्ति सगुण कार्य करता है, और निर्गुण व्यक्ति कोई सगुण कार्य नहीं करता है। और जब गुण, शुद्धता, भावना और भ्रम एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं, वे शुद्ध नहीं बने रह सकते। वे उन गुणों की विशेषता प्रकट करते हैं जिसके साथ वे मिश्रित होते हैं। हे राजन, वह जो माया से प्रभावित होता है वह शीघ्र ही इस जगत में अपना जन्म लेता है, जिससे कि कोई भी इस शुद्ध स्थिर सत्य के अंतर्गत झूठ या कपट से बेदाग नहीं रह सकता। ज्ञान अंगों इंद्रियों ने बुद्धि को दबाकर लोगों को सांसारिक चीजों के आनंद में डुबोया है। मन इंद्रियों से जुड़ा होता है और विविध मार्गों का पालन करता है और तीन गुणों शुद्धता, भावना और भ्रम द्वारा भीषण रूप से उकसाया जाता है। हे राजन, सभी जीव ब्रह्मा से नीचे गतिशील और अगतिशील जीवों तक माया के जाल में फंसे रहते हैं, वे उनके साथ खेलती है। यह माया हमेशा सब पर प्रभावी रहती है और वह ततः इस ब्रह्मांड में निर्माण और परिवर्तन का कार्य कर रही है। हे राजाओं के राजा, क्रिया के प्रभाव में व्यक्ति इस असत्य का सहारा लेता है। अपने जन्म के अगले क्षण से ही व्यक्ति जब अपनी इच्छित वस्तुएं नहीं पाते हैं, उसके बाद मनन द्वारा इन सांसारिक वस्तुओं को कैसे सुरक्षित रखें वाले बहाने का सहारा लेकर और उस बहाने से बहुत से पापी कार्य करते हैं। वासना, क्रोध और लोभ, ये तीनों बहुत शक्तिशाली शत्रु हैं। जीव उनके प्रभाव में गलत से सही का भेद नहीं कर सकते हैं। जब धन, शक्ति और पद एक व्यक्ति के पास आता है, वह अहंकार में गहरा समा जाता है और बहुत अहंकारी हो जाता है। अहंकार से भ्रम आता है और भ्रम से संवेदन शून्यता और मृत्यु पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ व्यक्ति बहुत मानसिक बहस करते हैं और फिर ईर्ष्या, व्याकुलता और शत्रुता हृदय में फूटती है। भ्रम से आगे उत्पन्न होता है आशा, प्यास, दीनता, निम्न आध्यात्मिकता, अहंकार और अधार्मिकता। यह अहंकार द्वारा होता है कि लोग त्याग, दान, तीर्थ स्थलों की यात्रा, वचनों और धार्मिक रीतियों और उत्सवों के नियमों के अभ्यास में लगे रहते हैं। इस कारण ये त्याग की क्रियाएं इत्यादि अहंकार से आगे बढ़कर मन से अशुद्धता के बादल को हटाने में असमर्थ रहती है, जैसा शुद्धता और स्वच्छता का पालन करने से होता है। विशेषकर जब कोई क्रिया लालच या अनुचित प्रेम के रहते की जाती है, जैसा उसका उद्देश्य है, वह सभी संदर्भों में शुद्ध नहीं हो सकती। अतः किसी भी यज्ञ के प्रारंभ में ज्ञानी व्यक्ति यज्ञ के उद्देश्य की शुद्धता को देखते हैं। वह वस्तु जो दूसरों को बिना घायल किए संग्रह की जाती है, धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। हे राजाओं में सर्वोत्तम, अगर कोई चीज दूसरों को घायल कर अर्जित की जाती है और वह किसी शुभ क्रिया में उपयोग की जाती है, वह फल देने के समय विपरीत परिणाम लाती है। केवल वह जिसका मन बहुत शुद्ध और स्थिर होता है, वह किसी भी यज्ञ से पूर्णतः शुभ लाभ पाता है। अस्थिर मन अपने इच्छित वस्तुओं को अर्जित नहीं कर पाते हैं। जब गुरु और पुरोहित का अभिषेक निष्ठावान और शुद्ध होता है, इसके अतिरिक्त जब स्थान, समय, क्रिया, यज्ञ में काम आने वाली चीजें, मंत्र और यज्ञकर्ता पूर्णतः पवित्र होते हैं, तब केवल यज्ञकर्ता को अपनी संपूर्णता में पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर यज्ञ किसी शत्रु के विनाश या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए या किसी की प्राप्ति के इरादे से होता है, यह शुभ परिणामों को अशुभ परिणामों में बदल देता है और अंत में बर्बादी की ओर ले जाता है। स्वार्थी व्यक्ति यह समझने में असमर्थ होते हैं कि कौन सी क्रिया शुभ है और कौन सी नहीं। वे उस परिस्थिति पर निर्भर करते हैं जिसे वे देव कहते हैं और लोग सगुण कार्य के बदले पाप कार्य कर बैठते हैं। देव और दानव सभी ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टिकर्ता द्वारा रचित हैं। वे सभी स्वार्थी हैं, इस कारण वे युद्ध में लगे रहते हैं और एक दूसरे से युद्ध करते हैं। देव सत्व गुण से पैदा होते हैं, मानव राजस से उत्पन्न होते हैं और पक्षी तामस से उत्पन्न होते हैं। हे राजन, जब देव सद्गुण से पैदा होकर हमेशा द्वेषपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं, क्या आश्चर्य है फिर कि निम्न स्तन वाले एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए हैं। हे राजन, जब देवता हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और वैर से भरे रहते हैं, एक दूसरे से युद्ध में रहते हैं और तपस्वियों और संयमी व्यक्तियों के बाधक होते हैं, फिर यह जाने कि यह ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। कैसे आप उनसे क्रोध ईर्ष्या की भावना से मुक्त होने की अपेक्षा कर सकते हैं, इत्यादि। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा अधर्म पर 18,000 दोहों के महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम चौथी पुस्तक का 4वां अध्याय समाप्त होता है।
गुरु और शिष्यों का वार्तालाप के आज के एपिसोड पर आपके साथ के लिए धन्यवाद। आगे आ रहा है पृथ्वी ग्रह, हमारा प्रिय निवास। ध्यान योग्य समाचारों के बाद यहाँ परम गुरु टेलीविजन पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल्स। प्लेनेट अर्थ आवर लविंग होम इज अप नेक्स्ट राइट आफ्टर नोटवर्दी न्यूज हियर ऑन सुप्रीम मास्टर टेलीविजन।